20 नवंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। जिम्बाब्वे में अभी भी अनिश्चय की स्थिति, राष्ट्रपति मुगाबे के इस्तीफे के कोई आसार नहीं।
As for me, I've resolved that I'm on the streets until he goes out. There's no other option. I can't do anything else. I just need to see him go.
दिल्ली में किसान संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, मेधा पाटकर ने कहा।
आज किसानों की हत्या हो रही है और किसानी की हत्या भी हो रही है। एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, वो एक संस्कृति खत्म करने की एक साजिश चल रही है। वो सब इसलिए कि कॉर्पोरेट्स और प्रकृति पर जीने वालों के बीच में जो बहुत बड़ी दूरी है उसको बढ़ाकर चुनाव जीते जा रहे हैं।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे द्वारा इस्तीफा देने की समय सीमा को नजरअंदाज किए जाने के बाद जिम्बाब्वे की सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी सांसदों को तलब किया है। इससे पहले पार्टी जानू पीएफ ने मुगाबे को आज दोपहर तक पद छोड़ने के लिए कहा था। बीती रात मुगाबे ने देश को संबोधित किया था, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे के संबंध में कोई घोषणा नहीं की थी। कल संसद शुरू होने के बाद मुगाबे पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रोहिंग्या संकट को सुलझाने के लिए चीन ने 3 सूत्रीय योजना पेश की है। पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत से भागकर बांग्लादेश गए हैं। शरणार्थियों की वापसी के लिए बातचीत के बाद चीन ने कहा है कि रखाइन में तुरंत संघर्ष विराम रोका जाना चाहिए। चीन का ऐसा हस्तक्षेप असामान्य है, क्योंकि वह अक्सर 2 देशों के मामलों में कभी भी दखल नहीं देता है। हालांकि म्यांमार में अस्थिरता से चीन चिंतित है, क्योंकि उसने वहां कई परियोजनाओं में निवेश कर रखा है। पिछले महीने हुए चुनावों में राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा की जीत को केन्या की सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश डेविड मरागा ने कहा कि न्यायालय दोनों कानूनी चुनौतियों को खारिज करता है। केन्याटा के विरोधी राइला ओडिंगा ने अपने समर्थकों की मांग पर चुनाव का बहिष्कार किया था और कहा था कि चुनाव आयोग जरूरी बदलाव करने में नाकाम रहा है, जिसके कारण निष्पक्ष चुनावों की उम्मीद नहीं की जा सकती। संवाददाताओं का कहना है कि इस फैसले से देश में राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। वहीं केन्याटा के वकील अहमद नासिर अब्दुल्लाही ने इस फैसले को सही ठहराया है।
I think it's good for the country. I mean, good in the sense that we have gone through a constitutional process that's provided for in the constitution. Once we have satisfied that,
मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा है। मेरा मतलब है कि हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं। हमारे मुवक्किल ने आदेश माना और वो दोबारा चुनाव में गए। उनके विपक्षी ही चुनाव लड़ने नहीं आए। अब न्यायालय ने उनकी जीत की पुष्टि की है। हम उनके लिए खुश हैं, हम देश के लिए खुश हैं। ये थे केन्याटा के वकील नासिर अब्दुल्लाही के शब्द। पिछले सप्ताह आए भूकंप और सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों की आलोचना के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनेई ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। आयातुल्लाह ने कहा कि कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हालत देखकर वह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर दोगुनी मेहनत करने की जरूरत थी। ईरान इराक की सीमा पर आए 7.3 तीव्रता के भूकंप के कारण 400 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि 10,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी का 72 साल की उम्र में आज निधन हो गया। वो 9 साल से कोमा में थे। 1971 में वे दक्षिण कलकत्ता सीट से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में दास मुंशी न सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्री थे, बल्कि संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। दास मुंशी की खेलों में भी खासी दिलचस्पी रही। वे करीब 20 साल तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। अर्जेंटीना नौसेना की पनडुब्बी समुद्र में गायब होने के बाद खास बचाव उपकरण अमेरिका से अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। दक्षिणी अटलांटिक में सेन जुआन नामक पनडुब्बी से 4 दिन पहले संपर्क टूट गया था और इसमें 44 क्रू सदस्य सवार थे।
Tenemos al momento olas de 6-8 metros con vientos de 40 nudos de oeste-sudoeste y lamentablemente esta
हमने 6 से 8 मीटर ऊंची लहरों को नापा है और हवा काफ़ी तेज़ है, जो पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है। दुर्भाग्य से ये हालत अगले 48 घंटों तक रहेंगे, और इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि इस तरह के मौसम में खोजी अभियान काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये थे अर्जेंटीना नौसेना का प्रवक्ता एनरिक बाल्बी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। जिम्बाब्वे की सत्ताधारी पार्टी ने राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे पर इस्तीफा देने या महाभियोग चलाने की जो समय सीमा दी थी वो बीत चुकी है, जिसकी वजह से पूरे जिम्बाब्वे में अनिश्चितता का माहौल है। रविवार को देश को दिए संदेश में मुगाबे ने इस्तीफा देने का कोई जिक्र नहीं किया था। जिम्बाब्वे के वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 37 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद अब मुगाबे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ सरप्रिय सांगवान।
जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को उनकी ही पार्टी ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने सोमवार को अपना पद नहीं छोड़ा तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। ये समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। इससे पहले मुगाबे ने देश के नाम अपने संबोधन में इस्तीफे को लेकर कोई बात नहीं कही, बल्कि कहा कि अगले महीने होने वाले पार्टी की बैठक में भाग लेंगे और बैठक का नेतृत्व करेंगे।
I am aware that many developments have occurred in the party.
मैं जानता हूं कि कुछ नई घटनाएं पार्टी में हुई हैं, या कहें कि पार्टी के नाम पर कुछ व्यक्तियों ने उन्हें अंजाम दिया है।
93 साल के रॉबर्ट मुगाबे बीते 37 सालों से जिम्बाब्वे का नेतृत्व कर रहे हैं। सत्ताधारी जानू पीएफ पार्टी ने रविवार को बैठक कर मुगाबे को पार्टी प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया था। जिम्बाब्वे में कथित तख्तापलट के बाद प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। एक प्रदर्शनकारी डूडू नायरोंगो कहती हैं कि वो प्रदर्शन बंद नहीं करेंगी जब तक मुगाबे पद नहीं छोड़ देते।
As for me, I've resolved that I'm on the streets until he goes out. There's no other option. I can't do anything else. I just need to see him go.
हम अफ्रीका यूनिटी स्क्वायर पर बैठे हैं जब तक मुगाबे चले नहीं जाते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। ये थे प्रदर्शनकारी डूडू नायरोंगो के शब्द। मुगाबे के उपराष्ट्रपति इमरसन मनंगाव को बर्खास्त करने से सेना के कई कमांडर नाराज थे। प्रदर्शनकारियों में जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले कई बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस संगठन के नेता क्रिस मुत्स्यांगवा ने कहा है कि वो मुगाबे को हटाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे।
We have gone to the court today. We are hoping that the case is registered to say that Mugabe he was derelict of his executive duty.
हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दरखास्त करते हैं कि वो मुगाबे पर पद छोड़ने का दबाव बनाए। आपने 37 साल लिए, अब देश को आगे बढ़ने का मौका दें। अगर आप नहीं देंगे तो देश खुद रास्ता निकाल लेगा, चाहे महाभियोग के जरिए या आपके घर तक मार्च करके बताया जाएगा कि आपका वक्त खत्म हो गया है।
विपक्षी पार्टी MDCT पहले भी मुगाबे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला चुकी है, लेकिन तब वो विफल रहे थे। लेकिन इस बार मुगाबे के विरोध में उनके अपने ही खड़े हैं। महाभियोग की कार्यवाही पूरी होने में कई हफ्तों का समय लग सकता है।
जिम्बाब्वे में मुगाबे के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अब कुछ खबरें भारत से। आज राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग पर किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 21 राज्यों के करीब 180 से ज्यादा संगठनों के किसान दिल्ली पहुंचे। उनकी मांग थी कि देश में किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। राज्यों के आए किसानों ने सरकार से कर्ज माफी की भी मांग की। पेश है गुरप्रीत कौर और अभिमन्यु कुमार साहा की रिपोर्ट।
सुनी मांग, आंखों में आंसू और हाथों में दिवंगत पति की तस्वीर, कुछ इस तरह ललिता सोमवार को तेलंगाना से राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग पहुंची थी। एक पंक्ति की आखिर में मनीषा अपने माँ बाप की तस्वीर हाथ में लिए बैठी थी। पूछने पर बताया कि करीब 3 साल पहले कर्ज ने उनके सिर से पहले उनकी मां का साया छीना, फिर बाप का। हाथों में दिवंगत पतियों और मां पिता की तस्वीर लिए दर्जनों महिलाएं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव की किसान रैली में शामिल हुए थे। रैली में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित कई राज्यों के करीब 180 संगठनों से जुड़े हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। रैली का नाम किसान मुक्ति संसद दिया गया था। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा और कर्ज माफी की मांग करते हुए रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में हिस्सा लेने आए हरदोई जिला के लखविंदर सिंह ने अपने दर्द का जिक्र करते हुए कहा,
सर हमारी मांगे हैं सरकार से, एक तो हम फसल बहुत मुश्किल से पैदा करते हैं, इतना सूखा पड़ा हुआ है, डीजल महंगा बहुत है, डीजल लगा के फसल पैदा करते हैं, उसके बाद फसल का हमको रेट भी नहीं मिलता है, और जो सरकारी सुविधाएं हैं कोई हमें दवा अच्छी नहीं मिलती है, कोई खाद अच्छी नहीं मिलती है, कोई बीज अच्छा नहीं मिलता है, तो किसान इसलिए दबता चला जा रहा है कर्ज के नीचे हर रोज। अब आप देख रहे हैं कई जगह से मर रहे हैं किसान, को फांसी लगा रहा है कोई, दवाई खा रहा है कोई, कैसे मर रहा है, तो इसी वजह से हम लोग आंदोलित हैं कि हमारी मांगे सरकार पूरी करे और हमारे किसान के ऊपर ध्यान दिया।
रैली में तमिलनाडु के किसानों ने नर कंकाल के साथ प्रदर्शन किया। हरी लुंगी और गमछे में ये किसान दक्षिण भारत में नदियों को जोड़ने और कर्ज माफी की मांग कर रहे थे। किसान मुक्ति संसद का नेतृत्व कर रही मेधा पाटकर ने बीबीसी से कहा,
आज किसानों की हत्या हो रही है और किसानी की हत्या भी हो रही है। एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं वो एक संस्कृति खत्म करने की एक साजिश चल रही है, वो सब इसलिए कि कॉर्पोरेट्स और प्रकृति पर जीने वालों के बीच में जो बहुत बड़ी दूरी है उसको बढ़ाकर चुनाव जीते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनियों को भूमि जल और हर चीज़ देना और उसके लिए खेती घाटे का सौदा रखना ताकि वो घेटे आसानी से या तो अधिग्रहित कर सके या तो हड़प सके या खरीद भी सके, तो भी खेती का दाम फेंक कर ऐसा फेंको तमाशा देखो जैसा वो करते हैं, और इसके साथ मोदी सरकार है।
वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों के लिए कृषि उपज के लाभकारी मूल्य का विधेयक बने और जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान ही है जो पूरे देश के लिए रोजी रोटी पैदा कर रहा है, अगर इसी को दरकिनार कर दिया जाए तो सभी के लिए मुश्किलें होंगी। गुरप्रीत कौर के साथ अभिमन्यु कुमार साहा, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आज तीसरी सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी ने तीसरी सूची में 28 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें कई पूर्व विधायकों के टिकट कट गए हैं, कई सीनियर भाजपा नेताओं की सीटें भी बदली गई हैं। बीबीसी संवाददाताओं की पूरी टीम इस समय गुजरात में है। थोड़ी देर पहले मैंने उन सब से संपर्क किया। गुजरात चुनाव के लिए रोज उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, चुनाव प्रचार वहां अभी आरंभिक चरण में है। वहां अगले महीने चुनाव होने हैं, दो चरणों में चुनाव होंगे, और बीबीसी संवाददाताओं की एक बहुत बड़ी टीम इस समय पूरे गुजरात में फैली हुई है, अलग अलग इलाकों में पहुंची हुई है। इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सबसे पहले चलते हैं शालू यादव के पास जो इस समय आनंद में है। शालू, बताएं श्रोताओं को आपका अब तक का कैसा रहा है अनुभव।
जी रेहान जी, ये ऐसा सफर है जिसे मैं एक लाइन में कहूँ तो बाइक पर होके सवार हम पूछ रहे हैं गुजरात के अनकहे सवाल। और बाइक ये किसकी है? गुजरात की महिला राइडर्स की जो मोटरसाइकिल चलाती हैं। ऐसी चार महिलाएं हमारे साथ हैं जो हमारे साथ 900 किलोमीटर की एक यात्रा, एक सफर तय कर रही हैं, जिसके तहत वो दूर दराज गांव-गांव में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि वहाँ विकास क्यों नहीं पहुंचा। तो एक तरीके से सिटीजन जर्नलिस्ट हैं वो हमारे लिए, वो एक पत्रकार का रोल अदा करेंगी हमारे साथ इस जर्नी के दौरान। हमारे सफर का पहला पड़ाव बनासकांठा में था, जहाँ पर महिलाओं की जो आधी से ज्यादा जनसंख्या है वो अनपढ़ है।
शालू, ये बताइए कि ये जो आपका गैंग है, जो बाइकर्स गैंग है, इनकी पूरी शहरी पृष्ठभूमि है, किस तरह से ये लोग पूरे ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो पा रहा है शहरी महिलाओं का ग्रामीण महिलाओं से?
जी रेहान सर, काफी दिलचस्प कनेक्ट है। जब हम अहमदाबाद से निकले इन चार महिला राइडर्स के साथ, जो कि काफी आत्मविश्वास से भरी हैं, काफी एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और इन्होंने समाज की कई बेड़ियां तोड़ी हैं इस मकाम तक पहुंचने के लिए, जो वो अब आज यू नो सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नारी हैं। और जब ये अपनी मोटरसाइकिल लेकर हमारे साथ इस सफर पर निकली और ग्रामीण महिलाओं से मिली, तो दोनों पक्ष के लिए बहुत ही एक दिलचस्प प्रतिक्रिया देखने को मिली। जब ग्रामीण महिलाएं इनको गांव में मोटरसाइकिल पर आते हुए देखती थी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता था कि अरे ये बाइक पर कैसे आ रही हैं, ये तो आदमियों के चलाने की चीज है, और देखो यहाँ तो हम ये तो पैंट शर्ट पहन रही हैं, हम तो घूंघट में रहते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो डिफरेंस था उन दोनों के बीच में, वो इनके जो कम्युनिकेशन है, जो इनकी बातचीत है, उसके आड़े नहीं आया। बहुत ही गर्म जोशी से उन्होंने स्वागत किया। और एक महिला ने तो हमें ये बताया कि लिंग अनुपात की जो समस्या है, जिसके बारे में पूरा गांव बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्योंकि ये महिलाएं हमारे साथ थी, गांव की एक महिला ने हमें ऑन रिकॉर्ड ये बताया कि वहां पर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन क्लिनिक्स हैं, जहां पर लिंग जांच की जाती है, और अगर लड़की होती है तो बच्ची को गिरा दिया जाता है। अब ये इस बात को इतना खुलकर जर्नलिस्ट भी शायद नहीं निकलवा पाते हैं, लेकिन क्योंकि ये गुजरात की ही महिलाएं थी और एक लेवल पर शायद वो कनेक्ट कर पा रही थी एक दूसरे पर।
बहुत बहुत धन्यवाद शालू आपका। चलते हैं यहाँ से दिव्या आर्या के पास, जो कि कई इलाकों में घूम कर आई हैं, गोधरा में और मुस्लिम इलाकों में भी उन्होंने कवर किया है। दिव्या बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा, क्या देख पा रही हैं आप वहाँ?
रेहान जी, आए तो हम एक ऐसी तस्वीर के साथ में अपनी आंखों में कि गुजरात बहुत विकास में अग्रसर रहा है और यहाँ पे जो खूबसूरत सड़कें हमें हाईवे से एक शहर से दूसरे शहर ले जाती हैं, वही शायद उसकी कहानी बयां करती हैं। लेकिन जब हम लोगों से मिले और एक अक्रॉस सेक्शन हम लोगों से मिले, यानी कि अलग अलग जो आर्थिक स्तर से हैं और अलग अलग कौम से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग जाति से रखते हैं, तो एक बात सब जगह मुझे लगा चल रही है, वो ये है कि विकास पागल हो गया है। जो कि सोशल मीडिया पर एक चला था, विकास गांडो था यो छेद, इस तरह की बात हर कोई कर रहा है। शिकायतों से भरे हैं लोग, और सबसे बड़ा मुद्दा जो वो उठा रहे हैं वो बेरोजगारी का है। जितने युवा वर्ग से हम मिले वो सब रोजगार की कमी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
चुनाव के इतने पहले लोग उदासीन होते हैं चुनाव के लिए, लेकिन आप कुछ सुगबुगाहट देख रही हैं, कुछ हलचल आपको दिखाई दे रही है आने वाले चुनाव के लिए?
यही इस बार सब बता रहे हैं कि गुजरात में, क्योंकि 22 साल से बीजेपी की ही सरकार रही है, एक ही पार्टी की सरकार रही है, तो चुनाव आता भी है तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी ही दोबारा आ जाएगी। लोगों का कहना है कि ये पहली बार है इतने लंबे दौर के बाद कि जब चुनाव के वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। कई युवा नेता सामने उभरे हैं, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, चाहे वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, चाहे कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव हो, वो लोग साथ मिलके या अलग अलग, किसी भी तरह से वोट या सीटों में ये बहस ट्रांसलेट हो ना हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार लग रहा है कि चुनाव है। तो वो जिस सुगबुगाहट की आप बात कर रहे हैं, इस बार लोगों का कहना है कि वो आखिरकार गुजरात में महसूस हो रही है।
तो आप नजर रखिए वहाँ के चुनावी जो भी माहौल है। आइए चलते हैं विनीत खरे के पास, जो खुद बताएंगे कि वो इस समय किस इलाके में हैं।
रेहान, इस वक्त मैं चिंची गांव है दांग इलाके का, और मैं चारों तरफ देख पा रहा हूँ पहाड़ और पेड़, और इतना खूबसूरत है कि कभी कभी जब अभी मैं सोच ही रहा था कि लोग बोलते हैं कि दांग भारत या फिर गुजरात के पिछड़े इलाकों में से है, तो क्यों है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। बेहद खूबसूरत, पिछले दो हफ्ते से गुजरात के दौरे पर हूँ और मैंने यहाँ पे ट्रेडर्स की बात की है। जो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा से विपक्ष बनाया है, तो उसको लेकर जो ट्रेडर्स हैं नाराज हैं, हमने उनसे बात की है। इसके अलावा हम बीबीसी पॉपअप लेकर यहाँ पर आए हैं। बीबीसी पॉपअप मतलब कि आप हमें बताएं, लोग हमें बताएं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें वो देखना चाहते हैं, बीबीसी कवर करे जो बीबीसी नहीं करता है। इसके अंतर्गत हम बनासकांठा में गए, वहाँ पर एक किसान की कहानी हम जल्द ही लेकर आएंगे, जिन्होंने पूरे इलाके में इस तरह से जो अनार की खेती पहले बार नहीं होती थी, आज वो एक तरह से लोग कहते हैं रेवोल्यूशन आ गया है और अनार अब एक्सपोर्ट होने लगा है। उसके बाद फिर हम यहाँ डांग में आए हैं। डांग में एक कहानी हमारे पास लोगों ने भेजी थी कि यहाँ पर बात हो रही है डैम बनाने की, बांध बनाने, जिससे जो लोग हैं जिनकी जमीन डूब जाएगी, जिनके घर खेत डूब जाएंगे, वो डरे हुए हैं। तो हम उनकी कहानी करने आए हैं और ये दोनों कहानियां हम जल्द लेकर आएंगे।
और ये एक कैसा रिस्पांस हो रहा है ये जो पॉपअप का जो आपका अभियान है?
देखिए, जितने लोगों से हमने बात की, हमने दो सभाएं की थी अहमदाबाद में, और स्टूडेंट के साथ और आम लोगों के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि कम से कम यहाँ का स्थानीय मीडिया जिन मुद्दों को नहीं उठाता, बीबीसी उठाने की कोशिश करे, जैसे डांग को ही हम ले लें, तो मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका कहना था यहाँ तो मीडिया आता ही नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही गुजरात का जो आखिरी बॉर्डर विलेज है महाराष्ट्र का, वहां से देखकर आए हैं, वहां से होकर आए हैं, वहां सड़कों की विकास की क्या हालत है, वो हम उस पर हम रिपोर्ट भेजेंगे, और भी यहाँ गाँव की क्या हालत है, यहाँ पर लोग जो है किस तरह से, नौकरियां नहीं है, पानी नहीं है। अब सोचे ना, जो इलाका जहाँ पर नदियां बह रही है वहाँ लोग कह रहे हैं कि पानी की कमी है, लोग टैंकर से पानी लेकर आ रहे हैं।
बहुत बहुत
कहानियां हम जल्दी लेकर।
बहुत बहुत धन्यवाद विनीत। और अब प्रियंका दुबे के पास इस समय। प्रियंका, आप कल नरेंद्र मोदी के गांव में थी, बताइए कैसा रहा अनुभव, क्या क्या देखा आपने?
जैसे नरेंद्र मोदी जी के गांव वडनगर में दाखिल होते हैं तो आपको शुरुआत में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, सड़कें दिखेंगी जब आप एंटर कर रहे हैं गांव में, और आपके स्मार्टफोन पे एक सिग्नल भी आएगा कि वडनगर वाईफाई शहर में आपका स्वागत है, और आप वडनगर वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। लेकिन जैसे ही आप गाँव में अंदर जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी है वो नगर पालिका, आप जैसे ही अंदर जाते हैं उनके कुछ खास मोहल्ले हैं अदर बैकवर्ड कास्ट के और दलित बहुल इलाके, जहाँ पे रोहित पास में मैंने पर्टिकुलरली विजिट किया था, वहाँ पर लोग हैरान थे सबसे पहले देखकर कि कोई मीडिया से आया है और उनकी बातें लिखना चाहता है। ओपन डिफिकेशन तो
प्रियंका ये तो रही नरेंद्र मोदी की बात, आपका फोकस रहा है इस दौरान पंचायतों पर और खासतौर से दलित सरपंचों पर, उसके कुछ अनुभव बताइए।
जो मैंने महसूस किया, हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जिग्नेश मेवानी जी ने जो पूरा एक नई लहर जो अभी गुजरात स्टेट में चली है उना के मूवमेंट के बाद, उसका कितना असर जो विलेजेस है गाँव वहाँ पे आप कितना महसूस कर सकते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर आप डीप पॉकेट्स में जाते हैं गुजरात के, मैं पाटन जिले में और मेहसाणा जिले के कई गांव में मैंने विजिट किया, सरपंचों से बात करी, वहाँ पे लोगों को नहीं मालूम है। वहाँ पे बहुत सारी जो आम जनता है, आम दलित, अगर आप दलित वास में जाएंगे वहाँ पे लोग नहीं पहचानते कि जिग्नेश मेवानी कौन है या अल्पेश ठाकुर कौन है, मगर वो इतना उनके मन में तय है कि वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, ऐसा वो कह रहे हैं। जबकि वो जानते हैं मोटा मोटी की 7% उनकी जनसंख्या है, वो कितना असर डाल पाएंगे नहीं, लेकिन वो ज्यादातर बोल रहे हैं कि उनका झुकाव इस बार कांग्रेस की तरफ है।
ये थी प्रियंका दुबे, गुजरात से बता रही थी वहाँ का चुनावी माहौल, और इसके अलावा हमने बात की बीबीसी के दूसरे संवाददाता दिव्या आर्य, विनीत खरे, और ये लोग पहुँचे हुए थे गुजरात के विभिन्न इलाकों में। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ फिर से हैं वंदना।
वंदना,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी, चिट्ठियां पढ़िएगा।
इनका नाम है आयुषी ददरिया, ये मध्यप्रदेश वाली हैं, कहती हैं कि मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूं और मेरी माँ रोली ददरिया बीबीसी की नियमित श्रोता हैं। मुझे और मेरी माँ को बीबीसी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। समय के अभाव में मैं नियमित रूप से तो नहीं सुन पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक कार्यक्रम जरूर सुनूं।
अच्छी बात है।
और ये कहती है कि हालांकि इनको कार्यक्रम तो सभी पसंद है, खासकर विवेचना की इन्होंने बात की और खासकर उसमें इंदिरा गांधी पर जो विवेचना हुई उसका जिक्र किया है, और ये कह रही हैं कि मुझे माफ़ कीजिए रेहान जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उम्र में बहुत छोटी हूँ।
जी,
और ये मेरा पहला पत्र है, अरे वाह,
बहुत ही
इसे जरूर
बात
शामिल कीजिएगा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, ये लिख रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी महिला श्रोता का पत्र शामिल करते हैं।
आयुषी ददरिया, आप 12वीं कक्षा की छात्रा हैं, बीबीसी सुनती हैं, कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, हमें इस बात की बेहद खुशी है, आप लगातार अगर लिखेंगी तो और अच्छा रहेगा।
अगला जो पत्र है वो है नितेश पंत, छत्तीसगढ़ से, ये भी लिखते रहते हैं और बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी 75 साल के हैं और उन्हीं के कहे अनुसार आपको ईमेल लिख रहा हूँ।
इन्होंने अपने पिताजी का नाम भी लिखा है,
प्रकाश चंद्र पंत। लिखते हैं कि अब हम दोनों मोबाइल पर ही कार्यक्रम सुनते हैं, जबकि तब तो ये रेडियो के माध्यम से सुना करते थे, और खासकर संदीप सोनी जी की तारीफ की है कि बड़ा ही बड़े तन्मयता से करते हैं कार्यक्रम।
नितेश पंत जी, आपकी चिट्ठी तो हमें लगातार मिलती रहती है, लेकिन आपके पिताजी प्रकाश चंद्र पंत की तरफ से ये जो संदेश मिला है इससे हमें बहुत खुशी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बताएंगे कि बीबीसी ने कब कब कैसे कैसे ऐतिहासिक मोड़ों पर अपने श्रोताओं को सटीक और निष्पक्ष जानकारी दी है।
दो पीढ़ियां फिर रेडियो से अब मोबाइल पर माध्यम भी बदल गया।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपके पास
इलाहाबाद से हैं दो श्रोता, पहला है अनिल शुक्ल का, वो लिखते हैं कि गुजरात से रिपोर्टें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वहां बीजेपी के खिलाफ व्यापक गुस्सा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की हार पक्की है। हमें खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि बीबीसी की रिपोर्टें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सबसे पिछड़ा इलाका हो। और दूसरा ये ईमेल इलाहाबाद से ही है, मनीष कुमार का, जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि 19 नवंबर को गुजरात के वड़नगर से स्वच्छता पर प्रियंका दुबे की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी लगी, वहाँ के लोगों की बात को जिस निष्पक्षता के साथ सुनाया गया वो बेहतरीन रहा, और लिखते हैं कि मीडिया की निष्पक्षता का पैमाना है बीबीसी।
दोनों ने अलग अलग तरह से बीबीसी की रिपोर्टों को सुना और समझा, दोनों की बात सामने आ गई है। दरअसल गुजरात के लोग जो कह रहे हैं, वहाँ की दलित बस्तियों में, पिछड़े हुए लोगों की गरीब बस्तियों में जो लोग कह रहे हैं, वो हमने आपके सामने रखा। यही हमारा काम भी है
जी। और अगली चिट्ठी है रवि, ये भी गुजरात से, जाहिर है वहाँ से काफी अभी हमारे हाँ, टीम मौजूद है वहाँ पे
मौजूद हैं बिल्कुल
जी। कह रहे हैं कि सारी की सारी रिपोर्टें अच्छी होती हैं, आप पाटीदार और दलितों की बात कर रहे हैं, वार्ड नगर से रिपोर्ट भी सुनी, हालांकि विकलांगों पर कोई ध्यान नहीं देता।
ये बात इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो दृष्टिबाधित हैं रेडियो सुन करके ही वो पूरी दुनिया से संपर्क रखते हैं, तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो जानते हैं। तो ये आपने अच्छा सुझाव दिया, हमारी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव का जो हमारा कवरेज है उसमें हम जो विकलांग लोग हैं या अशक्त किसी तरह से लोग हैं उनकी बात भी आए
जी। तो अगला जो ईमेल है श्री गंगानगर राजस्थान से है और इनका नाम है मानव राही, और ये बोल रहे हैं कि विश्व शौचालय दिवस पर प्रियंका दुबे की आवाज़ में रिपोर्ट सुनी, चंचलता अधिक थी पर आवाज़ मधुर थी।
देखिए एक बात मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि प्रियंका दुबे हमारी एकदम नई साथी हैं, नई रिपोर्टर, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको रेडियो की कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट,
पहली रिपोर्ट थी
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पत्रकारिता को काफी अनुभव है उनके पास लेकिन रेडियो का अनुभव नहीं है, इसलिए आवाज में थोड़ी चंचलता आपको लगी होगी लेकिन जो पत्रकारिता उन्होंने की, जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी वो वाकई अच्छी थी।
और अगला जो संदेश है अजीत कुमार का, सिवान से लिखते हैं कि दिन भर कार्यक्रम डाउनलोड नहीं कर पा रहा।
ये शिकायत आप एक बार चेक कीजिएगा कि क्या आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई गड़बड़ी है, और दूसरे श्रोताओं की तरफ से ऐसी शिकायत नहीं आ रही है, हम भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये क्या समस्या है आप पहले इसको देखिए, अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया तब फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
ये ईमेल है लक्ष्मी नारायण शीतल का, और इसी तरह पटना से मोहम्मद सैफ अंसारी, दोनों ने ही कहा है कि जो वेबसाइट है bbchindi.com उस पर कई त्रुटियां इनको देखने अच्छा। को मिलती हैं। और साथ ही में जो अंसारी साहब है उन्होंने लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनको शायद मिस्र का राष्ट्रपति लिख दिया गया।
ये गलती आपने इसकी ओर ध्यान दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार कोशिश रहती है कि गलतियां कम से कम हों लेकिन कभी कभी मानवीय भूल जरूर हो जाती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, विदा लेता हूँ, चलते चलते पता नोट कीजिएगा, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच रोमांचक तरीके से ड्रॉ रहा। सूर्यांशी पांडे की रिपोर्ट।
भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा। विराट कोहली के 50वें शतक की मदद से भारत ने 8 विकेट गवाकर 352 रन बनाकर इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। श्रीलंका को 231 की लीड देने के बाद ये मुकाबला ड्रॉ ही लग रहा था, लेकिन भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने श्रीलंकाई टीम के 7 विकेट चटकाए और मात्र 26 ओवर में 75 रन पर श्रीलंकाई टीम को रोके रखा। लेकिन 5वें दिन भी खराब रोशनी के कारण मैच कुछ समय पहले खत्म करना पड़ा और मैच ड्रॉ रहा। वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
बहुत ही जबरदस्त बॉल डाला भुवनेश्वर, मोहम्मद शमी ने एक, उमेश यादव ने भी एक विकेट निकाल ली, लेकिन अगर मेरे से आप पूछोगे मेन कारण क्या रहा तो मौसम, क्योंकि अगर ये खेल पूरा हुआ होता 5वें दिन तो डेफिनेटली इसमें रिजल्ट तो निकलना था, कोई किसी ने किसी तरफ तो निर्णय होता।
5वें दिन भुवनेश्वर कुमार ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद शमी को 2 और उमेश यादव को 1 विकेट मिला। आर अश्विन और जडेजा को मौका ना मिलने पर बात कर रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
पहली इनिंग में भी 4 विकेट भुवनेश्वर को मिले, 4 विकेट मोहम्मद शमी को मिले और 2 विकेट उमेश यादव को, तो जब आपके फास्ट बॉलर ने अच्छा बॉल डाला है कोई जरूरी नहीं कि आपको स्पिनर्स यूज करने पड़ेंगे।
तो भारत बनाम श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच काफी रोमांच भरा रहा। भारत बनाम श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मुकाबला नागपुर में 24 नवंबर को खेला जाना है।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। जर्मनी की सेंटर लेफ्ट पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स के मार्टिन शुल्स ने जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। इस कारण दोबारा चुनाव होने की संभावना है। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे द्वारा इस्तीफा देने की समय सीमा को नजरअंदाज किए जाने के बाद जिम्बाब्वे की सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी सांसदों को तलब किया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी का निधन हो गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।